तारिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे नित्य चैतन्य चरितामृत के 37वें दिवसीय सत्र में। कल हमने चर्चा की थी अध्याय 11 और 12। अध्याय 11 में हमने हरिदास ठाकुर इनका महाप्रयाण इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार से एक दिन जब महाप्रभु हरिदास पहले गोविंद महाप्रभु से जब मिलने आते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर से मिलने, तो वो देखते हैं कि हरिदास ठाकुर शयन कर रहे हैं और शयन करके वो कुछ भगवान के नाम का जप कर रहे थे संख्या पूर्वक। और जब इस प्रकार से वो देखते हैं कि वो थोड़े कमजोर हो गए और गोविंद जी कहते हैं कि आप ये प्रसाद लीजिए, तो कहते हैं कि मैं जब तक ये व्रत पूरा नहीं कर लूँ तब तक मैं कुछ नहीं ले सकता। और फिर वह दूर से ही प्रणाम करते हैं प्रसाद को और रंच मात्र ग्रहण कर लेते हैं। अगले दिन जब महाप्रभु आते हैं, महाप्रभु पूछते हैं कैसी है तबीयत, तो कहते हैं कि मेरा शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। तो महाप्रभु पूछते क्यों मन बुद्धि ठीक नहीं है, तो कहते कि मैंने व्रत लिया हुआ है, मेरा 3 लाख माला का वो पूरा नहीं हो रहा है। तो महाप्रभु कहते देखो अभी आप वृद्ध हो गए हैं, आपको इतना जप करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रचार नाम का प्रचार करने के लिए आपका अवतार हुआ था, काफी नाम का आपने प्रचार अभी कर लिया है, अभी आप मालाओं को कम कर दीजिए। लेकिन हरिदास ठाकुर कहते कि मैं इतना पतित हूँ और मेरी एक ही इच्छा है कि आप, मुझे लग रहा है कि आप लीला संवरण करेंगे, उसके पहले मुझे देहत्याग करना है। और किस प्रकार से अगले दिन महाप्रभु आते हैं, सारे भक्त कीर्तन करते हैं और हरिदास ठाकुर जी जो है वो महाप्रभु के चरण कमल अपने वक्षस्थल पर रखकर अपने आँखों से महाप्रभु के मुखमंडल को निहारते हुए अश्रु प्रवाहित हो रहे थे आंखों से भी, और अपनी जिह्वा से श्री कृष्ण चैतन्य ऐसा उच्चारण करते करते वो अपने प्राण छोड़ देते हैं। और सबको भीष्म पितामह इनकी याद होती है जिन्होंने इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के सामने इच्छा मृत्यु जिनको वर प्राप्त हुआ था उन्होंने देहत्याग किया था। और किस प्रकार से हमने देखा महाप्रभु स्वयं गोद में हरिदास ठाकुर के शरीर को लेकर नृत्य करते हैं और स्वयं जो है वह समुद्र स्नान कराते हैं, नहलाते उनके शरीर को और गड्ढा करके उसमें जो है वो उनके शरीर को रखा जाता है और इस प्रकार से जो है समाधि बनाई जाती है। तो प्रदक्षिणा करके महाप्रभु जो है वो सारे दुकानों से भिक्षा मांगकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और ऐसा एक महोत्सव बनाते हैं। और उसके अगले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से सारी पार्टी जब बंगाल से जगन्नाथपुरी आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, उस समय शिवानंद सेन जो सब कार्रवाई किया करते थे, सब कुछ व्यवस्था किया करते थे, तो एक बार की बात थी कि नित्यानंद प्रभु गुस्सा हो जाते क्योंकि उन्हें आवास नहीं मिलता, क्योंकि वो जो है वो कि टोल नाके पर शिवानंद सेन उन्हें ज्यादा समय के लिए रुकना होता है और वहां पर जो है वो रुकने के कारण आगे नहीं जा पाते। और जब सब भक्त आगे गए हुए थे नित्यानंद प्रभु को आवास नहीं मिलता, तो गुस्सा हो जाते और शाप देते है कि शिवास के तीनों पुत्र मर जाए। तो वास्तव में वो मरते नहीं है तीनों पुत्र, वो शाप तो केवल उन्होंने मजाक में दिया था। तो इस प्रकार से जो है वो लीला का वर्णन किया। और फिर जब वो सारे जाते हैं तो महाप्रभु ने भी शिवानंद सेन के ऊपर कृपा की और कहे कि तुम गोविंद से कहे कि जब तक शिवानंद सेन की पत्नी और उनके बच्चे यहाँ पर है पुरी में, मेरा उच्चिष्ट प्रसाद जो है वो उन्हें देना है। और उसके बाद हमने जो है वो ये लीला देखी जगदानंद पंडित की। तो जगदानंद पंडित जब जगन्नाथपुरी से महाप्रभु की आज्ञा लेके पिछले साल नदिया गए थे, वहां पर वो शची माता आदि सबसे मिले थे, तो वहां से वो शिवानंद सेन उनके घर और वहां से जो है वो कुछ सुगंधित तेल 16 शेर लेके आए थे महाप्रभु के लिए और गोविंद को दिए थे कि महाप्रभु को सर के मसाज के लिए उन्हें दे देना ताकि उनका पित्त और वायु का प्रकोप कम हो जाए। और महाप्रभु फिर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जगदानंद पंडित उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और फिर वो घर में आते हैं, वो बर्तन लेके फेंक देते हैं और सारा तेल तेल हो जाता है और अपने आप को घर में जाके बंद कर लेते हैं और 3 दिन तक बाहर ही नहीं आते और कुछ खाते भी नहीं है। और महाप्रभु जाते हैं उनके यहाँ पे और महाप्रभु कहते हैं कि दर्शन करने के लिए जा रहे जगन्नाथ जी का, और महाप्रभु कहते हैं कि मैं प्रसाद के लिए आऊंगा। इस प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके प्रसाद के लिए भी आते हैं और उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा करते हैं और अच्छे से प्रसाद पा लेते हैं और पुनः जो है वो लौट आते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु की लीलाएं सुंदर चल रही है, इसका हम लोग वर्णन कर रहे थे। लीला कहते कहते बीच में क्या हो गया था कि शिवानंद सेन के जो 3 बच्चे हैं उनके बारे में एक थोड़ी सी गलत जानकारी दी गई थी मुझसे, तो उसे सुधार करना चाहेंगे। शिवानंद सेन के 3 पुत्र थे, तो ये जानकारी आदि लीला के अध्याय 10 और जो अंत लीला के 2 अध्यायों में इनको एकत्रित करके करनी पड़ती है तो ठीक से समझ में आता है। तो इनके 3 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था चैतन्य दास, दूसरे पुत्र थे रामदास और तीसरे सबसे छोटे जो पुत्र थे वो थे पुरी दास या परमानंद दास जिन्हें कहा जाता है। तो मैंने एक बार गलती से बता दिया था कि जो चैतन्य दास थे वो कवि करुणापुर बनते थे, जिन्होंने महाप्रभु का आमंत्रित किया था अपने घर पे और जिन्होंने महाप्रभु का मन जान लिया था, तो वो चैतन्य दास परमानंदपुरी ये कवि कर्णपुर नहीं बनते हैं। जो आखिर में जो सबसे छोटे बच्चे थे परमानंद दास या पुरी दास, जो आगे चल के कवि कर्णपुर बनते हैं, जिन्होंने गौर गौणोदेश दीपिका और आनंद वृंदावन चंपू ये ग्रंथ लिखे। और जो चैतन्य दास जो सबसे बड़े पुत्र थे उनके, उन्होंने जो है वो बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा रचित कृष्ण कर्णामृत इस ग्रंथ के ऊपर जो है वो टीका लिखी है, टिप्पणी लिखी है। तो ये 3 पुत्र शिवानंद सेन के, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्याय 13 जिसका शीर्षक है जगदानंद पंडित के साथ और कुछ लीलाएं महाप्रभु की और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इनका महाप्रभु से मिलन। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो अध्याय 13 इसमें पहले ही श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण विच्छेद जातार्त्या क्षीणे चापि मनस्तनु दधाते फुल्लतां भावैर यस्य तं गौरम आश्रये। कृष्ण विच्छेद जात्यार्ता, कृष्ण के विरह के कारण महाप्रभु के अंदर एक पीड़ा का अनुभव हुआ करता था। क्षीणे चापि मनस्तनु, उनका शरीर और मन दोनों क्षीण और दुर्बल हो गए थे। दधाते फुल्लताम भावे, लेकिन जब भावावेश में आते थे प्रेम के वो तुरंत प्रफुल्लित हो जाते थे और नृत्य करना प्रारंभ कर देते थे। तम गौरम आश्रये, उन श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। हे नमते महाप्रभु जगदानंद संगे नाना मते आस्वादय प्रेमे रत्तरंगे। इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं महाप्रभु की हुआ करती थी। कृष्ण विच्छेद दुखे क्षीण मन काय भावावेशे प्रभु कभू प्रफुल्लित होय। कृष्ण के विच्छेद में उनका शरीर उनका मन जो है वो क्षीण हो जाता था, दुर्बल हो जाते थे, दुबले पतले भी हो जाते थे महाप्रभु, और कभी भाव में आते थे तो पुनः प्रफुल्लित उनका मन और उनका शरीर जो है वो बन जाता था। तो विच्छेद के कारण जो महाप्रभु दुर्बल हुआ करते थे, और महाप्रभु जो है वो उनका नियम था, वो संन्यास नियम का तो बहुत कठोरता से ही पालन करते थे। वो केले की शुष्क छाल उसके ऊपर हमेशा सोया करते थे, और जब दुबले हो जाते थे भाववेश में आकर कृष्ण के विरह के कारण, तब तो उनकी हड्डियों को बहुत तकलीफ होती थी उस शुष्क छाल पर जब वो सोते थे। तो सारे भक्तों को जो वो बहुत दुख हुआ करता था जब महाप्रभु को ऐसी अवस्था में देखते थे कि वो शुष्क केले के छाले पर जो है वो सो रहे थे, तो भक्त दुखी हो जाते हैं। और जगदानंद पंडित, हमें तो उनका स्वभाव पता है, महाप्रभु को सुख प्रदान करना चाहते हैं। तो जगदानंद पंडित एक युक्ति करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ नए वस्त्र लेके आते हैं और उनको गेरुआ कलर करते हैं, गेरुआ रंग चढ़ाते हैं, ढेर सारी रुई लेके आते हैं और रुई उसमें डाल के उस गेरुआ रंग के वस्त्र में जो है वो रुई की एक अच्छे से वो रजाई और एक तकिया बना देते हैं और गोविंद को देते हैं, और गोविंद को कहते हैं कि महाप्रभु जब सोएंगे तो उन्हें तकिया और रजाई दे देना। तो पहले तो वो तेल लाए थे, अभी ये रजाई और तकिया दे दिया। तो ये देने के पश्चात वो गोविंद को केवल गोविंद को ही नहीं बताते, फिर वो स्वरूप दामोदर को भी बताते हैं कि आप भी ध्यान रखना, क्योंकि महाप्रभु शायद गोविंद का नहीं सुने, तो आप भी ध्यान रखना और जब सोएंगे तो ध्यानपूर्वक ये देना। तो जब महाप्रभु का सोने का समय होता है तो महाप्रभु सोने के लिए जाते हैं और देखते हैं वो तकिया रखा हुआ है, रजय रखा हुआ है। गोविंद को पूछते हैं किसने लाया है, गोविंद बोलते हैं कि जगदानंद पंडित ने दिया है। तो जैसे जगदानंद पंडित का नाम सुनते महाप्रभु थोड़े भय में आ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार तेल नहीं लगाया था तो 10 दिन बात नहीं किया था, 3 दिन भूखा रहा था, तो अभी पता नहीं नहीं प्रयोग करेंगे तो क्या। लेकिन फिर भी अभी तो संन्यास के नियम का तो कठोरता से पालन कर रहे थे, तक किया दूर कर दिया और पुनः अपनी जो शुष्क केले की छाल थी उसी के ऊपर जो है वो शयन करते हैं। और जब स्वरूप दामोदर भी विनती करते हैं कि महाप्रभु आप ये तकिया और रजाई ले लीजिए, नहीं तो जगदानंद दुखी हो जाएगा, उनका नाम सुना के कहते हैं कि वो दुखी हो जाएंगे। महाप्रभु कहते हैं उन्हें बोलो और एक थोड़ा चौपाई की खाट भी एक लेके आ जाए ताकि अच्छे से सो पाऊं। जैसे कल तेल के लिए उन्होंने कहा था थोड़ा मसाज वाला भी लेके आ जाना, तो इसे आज वो कह रहे थे कि थोड़ी खाट बीट भी लाके रहना। ये जगदानंद पंडित हमेशा मेरे सुख के बारे में ही जो है वो सोचता रहता है, लेकिन मैं एक सन्यासी हूँ, इस प्रकार से रजाई तकिया खाट मेरे लिए जो है वो एक लज्जास्पद है इसका प्रयोग करना। तो इस प्रकार से जो महाप्रभु नहीं यूज करते हैं। पर स्वरूप दामोदर जब जगदानंद पंडित को सुनाते हैं कि इस प्रकार से महाप्रभु नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो जगदानंद पंडित बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन स्वरूप दामोदर एक युक्ति करते हैं। स्वरूप दामोदर क्या करते हैं, वैसे ही केले के छाले लेते हैं और उसको नाखून से उसको चीरते हैं, कई सारे केले के पत्तों को सूखे हुए चीरते हैं चीरते हैं चीरते हैं, उसका ढेर सारा बनाते हैं। और अभी वो नया वस्त्र नहीं लाते हैं, वो महाप्रभु के ही पुराने प्रयोग किए हुए बहिर्वस्त्र वो लेते हैं और उसके अंदर वो केले के जो छाल को उन्होंने जो है वो टुकड़े किए रहते हैं अपने नाखून से, उसे भरते हैं और वो भरकर महाप्रभु को देते हैं। महाप्रभु देखिए इसके अंदर केवल केले के छाली जो आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन केवल ज्यादा मात्रा में भरे हुए हैं, तो आप खुल के देख सकते हैं चाहिए तो। तो कई बार विनती करने के बाद महाप्रभु जो है वो उसका स्वीकार किए। महाप्रभु ने स्वीकार तो कर लिया, सारे भक्त थोड़ा सुख हो गए, लेकिन एक भक्त जो है वो नाराज के नाराज ही रहे। कौन है, जगदानंद पंडित। वो नाराज ही रहे क्योंकि उन्होंने रुई का वो तकिया वो यूज नहीं किया था। तो जो जगदानंद पंडित थे उनके मन में पहले से एक इच्छा थी, वृंदावन जाना था उन्हें, क्योंकि पहले हमें पता है वो नवद्वीप घूम के आए थे। कुछ भक्त होते हैं जिन्हें घूमना थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ वहां जाना चाहते हैं, तो वो नवद्वीप जाके सारे भक्तों से मिलके आए थे। तो अभी उनकी इच्छा पहले से थी वृंदावन जाना है, लेकिन महाप्रभु उन्हें छोड़ नहीं रहे थे। तो अभी वो महाप्रभु के पास आते हैं, महाप्रभु मैं कई समय से मेरे मन में इच्छा है कि वृंदावन जाना। महाप्रभु थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, पहले बताया ना नहीं, और अभी शायद तू गुस्सा है मेरे ऊपर इसलिए अभी जाना चाहता है वृंदावन, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। तू जाके तू भिखारी बन के रहेगा वहां पे, मेरी निंदा करेगा, तू मत जा। तो जगदानंद पंडित और दुखी हो जाते हैं, दुख पहले से ही थे और दुखित हो जाते हैं। और फिर जगदानंद पंडित स्वरूप दामोदर के पास चले जाते हैं और स्वरूप दामोदर से विनती करते हैं कि आप कृपया करके थोड़ा महाप्रभु को समझाइए ना, मेरे दीर्घ काल से मेरी इच्छा चलती आ रही है कि वृंदावन में जाऊं और वहां पे थोड़े स्थान देखूं, ऐसा नहीं कि मैं दुखी होकर जा रहा हूं, आप बताइए महाप्रभु को प्लीज, मेरी ओर से इतना इतना बता देना। तो फिर स्वरूप दामोदर महाप्रभु से विनती करते कि महाप्रभु ये जो जगदानंद है ना उसको बहुत समय से जाने की इच्छा है, मुझे पहले भी बोला था, ये ऐसा नहीं कि अभी दुखित होकर बोल रहा है, तो ऐसा मत कीजिए, आप उसे जो है वो अनुमति दे दीजिए। तो फिर महाप्रभु जो है वो इस प्रकार से बहुत बार बोलने के पश्चात जगदानंद को अनुमति दे देते हैं, और अनुमति तो दे देते हैं लेकिन जगदानंद को बुलाते हैं और ठीक से बताते हैं कि कैसे उन्हें जो है वो वृंदावन के लिए जाना है। तो सबसे पहले महाप्रभु कहते हैं कि देखो आप स्वच्छंद होकर तो वाराणसी तक जा सकते हैं, लेकिन वाराणसी के बाद आपको कोई क्षत्रिय साथ में लगेगा, क्योंकि क्या है वो जो रास्ता है वहां पर लुटेरों का काफी सारा भय रहता है और वो लोग देख लेंगे आप एक बंगाली व्यक्ति है और अकेले जा रहे तो आपको लूट लेंगे। तो वाराणसी से आगे आप जो है वो केवल कोई क्षत्रिय कुछ रक्षा करने वाला व्यक्ति को आप साथ में लेके जाइए, और हाँ वहां पर जाएंगे तो केवल सनातन गोस्वामी के साथ ही रुकना, अन्य ब्रजवासियों के साथ बिल्कुल उनके साथ रहना नहीं, क्योंकि आप उनका भाव पहचान नहीं पाएंगे। दूरे रही भक्ति करिह संगे न रही बा, तांसवार आचार चेष्टा लईते नारीबा। आप उनके आचार और इसको समझ नहीं सकते, वो व्रजवासी है, उनका अलग स्तर पे भक्ति चलता है, तो उसका अंगीकार तो बिल्कुल मत करना, लेकिन उनके साथ भी रहना नहीं, केवल सनातन के साथ जो है वो वन दर्शन करना और घूमना जहां पर भी है वो केवल सनातन के साथ ही जाना। देखिये महाप्रभु का इतना सनातन गोस्वामी के ऊपर विश्वास है, और जो है वो सनातन गोस्वामी को मेरा संदेश भी दे देना कि मैं जरूर वृंदावन आने वाला हूं, मेरे लिए एक स्थान की अच्छे से व्यवस्था करके रखना, और सुनो वृंदावन में ज्यादा समय के लिए नहीं रुकना चाहिए। शीघ्र आसी तहा न रही है चीर काल, गोवर्धने ना चढ़ी है देखी ते गोपाल। और जो है वो ज्यादा समय के लिए नहीं रखना और जल्दी चले आना। और सुनो कुछ लोग जो होते हैं व्रजवासी, वो लोग गोवर्धन पे चढ़ते गोपाल का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल मत जाना। तो वास्तव में वृंदावन जाने के लिए महाप्रभु जो जगदानंद को उपदेश दे रहे हैं वो हम सब भक्तों को भी लागू होता है। जैसे हम लोग यात्रा के लिए जाते हैं तो कुछ यात्रा के नियम बनाए जाते हैं, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो इस प्रकार से सारा जगदानंद को महाप्रभु जो है वो समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु जगदानंद पंडित को आलिंगन देते हैं और उनके चरणों की वंदना करके और सारे भक्तों का आशीर्वाद लेके जगदानंद अभी निकल पड़ते हैं। वन पथ से वो वाराणसी तक पहुंचते हैं। वाराणसी में कौन रहते हैं हमारे? वाराणसी में उन्हें मिलते हैं तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य। तो उन्हें उनके साथ मिलन होता है, उन्हें महाप्रभु की सारी लीलाएं सुनाते हैं और वो आनंदित हो जाते हैं जगदानंद का संग पाकर। कल ही हमने चर्चा किया था, जो भी जगदानंद से मिलता था उन्हें लगता था कि पाइनु चैतन्य, मैंने चैतन्य महाप्रभु का ही संग किया है, ऐसा उन्हें लगता था। तो वो काफी आनंदित हो जाते हैं और वहां से फिर आगे जो है वो जगदानंद मथुरा जाते हैं और मथुरा में वहां पर आगे चल के सनातन गोस्वामी से मिलते हैं। सनातन गोस्वामी भी बहुत आनंदित हो जाते हैं जगदानंद से मिलकर और दोनों एक साथ रहते हैं। सनातन गोस्वामी सारे 12 वनों का उन्हें दर्शन कराते हैं और दर्शन कराने के पश्चात, सारे 12 वन होने के पश्चात गोकुल महावन में सनातन गोस्वामी की एक गुफा थी। आज भी वो गुफा है, यदि आप गोकुल महावन में गए होंगे तो सनातन गोस्वामी उस गुफा में रहा करते थे। तो जगदानंद पंडित तो सनातन गोस्वामी की गुफा में रहा करते थे, लेकिन अपना खाना बनाना वो स्वयं, बगल में एक मंदिर था वहां पे वो खाना बनाया करते थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी जो है वो महावन, गोकुल महावन से भिक्षा मांगकर लाया करते थे और वही खाया करते थे। और जगदानंद पंडित की भी सारी व्यवस्था भिक्षा मांगकर सनातन गोस्वामी ने ही की, सब मांगते लाते थे और जगदानंद को देते थे, जगदानंद स्वयं अपना खाना बना लेते थे और जो है वो रहा करते थे। तो इस प्रकार से दोनों एक साथ रहा करते थे। एक दिन जगदानंद सोचे कि चलो मैं सनातन को बुलाता हूँ, अपने यहाँ पर ही प्रसाद पा लेंगे। तो एक दिन वो सनातन को बुला लेते हैं अपने यहाँ पे प्रसाद के लिए। उसी समय, उसी दौरान जो है वो एक मुकुंद सरस्वती करके एक सन्यासी थे, वो सन्यासी वृंदावन में आए थे और उन्होंने अपना एक उत्तरीय वस्त्र, बाहरी वस्त्र जो है वो सनातन को दिया था, लाल रंग का वो वस्त्र था। सनातन अपने सर के ऊपर उसे बांध लिए थे और बांध के वो जगदानंद के सामने जाके बैठ जाते हैं। तो जैसे ही वो लाल वस्त्र बांधा हुआ देखते हैं जगदानंद पंडित, वो प्रेमावेश में चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ वस्त्र पहन के सनातन यहाँ पर आए हुए है। तो सनातन को पूछते है ये कौन सा वस्त्र है? कहाँ पाईला तुम्ही ए रातुल वसन, मुकुंद सरस्वती दिल कहे सनातन। तो कहाँ पाया तूने ये लाल वस्त्र, रातुल वस्त्र, रातुल वसन मतलब लाल वस्त्र, कहाँ पाया, किसने दिया? तो कहते मुकुंद सरस्वती ने दिया है। जैसे मुकुंद सरस्वती नाम सुनते हैं इनका गुस्सा अभी रोका नहीं जाता, बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सुनी पंडित तेरे मने क्रोध उपजिला, भातेर हंडी हाथे लिया मारी ते आईला। जिस हंडी में भात बनाते पकाते उनका खाना बनाना अभी हो गया था, वो पूरा भात की हंडी उठा के मारने के लिए लेके आए सनातन को। और सनातन को तो पहले से पता था इनका स्वभाव कैसा है, कैसे वो बर्ताव करते हैं महाप्रभु के साथ भी, तो उन्हें जो है वो पता था। सनातन गोस्वामी थोड़े लज्जित हो जाते हैं और सनातन गोस्वामी अभी कहते हैं जगदानंद से, तुम्ही महाप्रभुर हो पार्षद प्रधान, तुमा सम महाप्रभुर प्रिय नहीं आन। आज मैंने देख लिया, क्या देख लिया, आप महाप्रभु के सबसे निकटवर्ती पार्षद हो और तुमा सम महाप्रभुर प्रिय नहीं आन, आपसे प्रिय महाप्रभु को कोई और नहीं है। और जगदानंद कहते हैं कि आपने दूसरे किसी, ये मुकुंद सरस्वती को क्या नाम बता रहे, इनका भैरवस्त्र आपने सर पर धारण किया है, महाप्रभु का नहीं है, ये मैं सहन नहीं कर पाया। और फिर वो जो है वो भात का हंडी लिया हुआ वो नीचे रख देते हैं, उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है। फिर सनातन गोस्वामी उनसे कहते हैं, ऐसे चैतन्य निष्ठा योग्य तो मते तुम्ही ना देखाई ले इहा सीखी वे कै मते। चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतनी दृढ़ निष्ठा है आपके हृदय के अंदर, आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से इसे अनुभव कर लिया है, देख लिया है। तुम्ही ना देखाई ले, आप यदि नहीं दिखाते तो मुझे कहां से सीखने को मिलता, ऐसी दृढ़ निष्ठा चैतन्य महाप्रभु के प्रति ये जो है वो आपने दिखाई है। आज मेरा ये वस्त्र सर के ऊपर बांधने का जो है वो कार्य, उसका उद्देश्य सफल हो गया है, क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष रूप से जो है वो देखने को मिला है। आज मैं किसी और अन्य व्यक्ति को, जो वैष्णव के लिए तो यह लाल वस्त्र मुकुंद सरस्वती द्वारा दिया उचित नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति को मैं ये दे दूंगा। और इस प्रकार से जो है वो दोनों एकत्रित बैठ जाते हैं और भोजन प्रारंभ करते हैं। और चैतन्य की, चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाएं जगदानंद पंडित सुनाने लगते हैं और सुन रहे हैं, दोनों प्रसाद ले रहे हैं और दोनों रो रहे हैं, रोते 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 जो है उनका प्रसाद जो है वो चल रहा है। यही मत मास दुई रहीला वृंदावने चैतन्य विरह दुख नायाय सहने। इस प्रकार से दो महीने तक जगदानंद पंडित वृंदावन में रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा समय तक विरह वो सहन नहीं कर पा रहे थे। और फिर अभी वो निकलने का समय आ गया, जगदानंद पंडित ने संदेश दिया, महाप्रभु ने जो दिया था सनातन गोस्वामी से, कि महाप्रभु कुछ समय पश्चात यहाँ पे आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि उनके निवास के लिए एक अच्छे से जगह आप बना के यहाँ पर रखना। और फिर सनातन गोस्वामी जो भी जगदानंद निकल रहे हैं उन्हें वृंदावन से कुछ भेंट वस्तुएं प्रदान करते हैं। अभी वृंदावन में एक भिक्षुक का और सन्यासी का जीवन बिता रहे सनातन गोस्वामी क्या भेंट दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति रहता है तो हम उसे भेंट देते हैं। हमने भी घर में देखा है कुछ ऐसे छोटे बच्चे जब आके रहते हैं तो हम उन्हें कपड़े देते हैं, कोई उन्हें पैसा देते हैं, भेजते हैं। सनातन गोस्वामी क्या देंगे, सनातन गोस्वामी क्या भेंट दी जगदानंद को। रास स्थलीर बालू आर गोवर्धनेर शिला शुष्क पक्क पीलु फल आर गुंजा माला। चार वस्तुएं दी। रास स्थलीर वालू, रास स्थली की वालू सबसे पहले दी, गोवर्धन की शिला दी, पके हुए पीलू के फल दिए और गुंजा माला, ये सब दिया और उन्हें विदा दी। तो जगदानंद पंडित वहां से निकल गए अभी सनातन गोस्वामी का आशीर्वाद लेके। और सनातन गोस्वामी फिर वहां जाते हैं और महाप्रभु ने आदेश दिया था कि वो आएंगे, तो इसके लिए द्वादश आदित्य तिला करके एक जगह है वृंदावन में। यदि आप में से कोई भक्त यदि गए हैं तो आप जानते होंगे ये द्वादश आदित्य तिला जो है यमुना नदी से नजदीकी है। और वहां पर जो है वो कृष्ण जब यमुना से आए थे कालिया का उद्धार करके, तब जो है उन्हें ठंडी लग रही थी, तो इसलिए 12 सूर्य वहां पर प्रकट हुए थे उन्हें उष्मा प्रदान करने के लिए, जो सिकुड़ रहे थे कृष्ण, तो उन्हें उष्मा प्रदान करने के लिए 12 सूर्य प्रकट हुए थे, उसे कहते हैं द्वादश आदित्य तिला। तिला यानी टेकड़ी, एक छोटा पहाड़ी जैसा। और वहां पर एक छोटा सा मठ स्थापित करते हैं और वहीं पर सनातन गोस्वामी ने अपनी एक कुटीर भी बनाई थी, और उसी के वहीं पर आज राधा मदन मोहन का मंदिर स्थित है, और उसके बिल्कुल नजदीक ही सनातन गोस्वामी इनका समाधि मंदिर भी जो है वो वहीं पर है। तो वहां पर जो है वो सनातन गोस्वामी स्थान बना लिए। और जो जगदानंद निकले थे वो भी वृंदावन पहुंच जाते हैं, महाप्रभु से मिलते हैं। सारे भक्त भी जगदानंद के वापसी से लेके बहुत प्रसन्न है। जो सारा भेंट वस्तु लाए थे वो सारे भेंट वस्तु तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सनातनेर नामे पंडित दंडवत कैला रास स्थलीर धूली आदि सब भेंट दिला। सनातन के नाम से भी उन्होंने दंडवत किया, तो खुद का तो दंडवत किया ही, लेकिन जैसे हम भी कहते हैं ना कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रणाम करना, तो उनके उनकी तरफ से और एक दंडवत उन्होंने जगदानंद ने सनातन की ओर से महाप्रभु का अर्पण किया। महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन दिया और रासस्थली आदि जो भी भेंट लाई थी वो सब भेंट वस्तुएं उन्होंने महाप्रभु को प्रदान की। और महाप्रभु ने सारी वस्तुओं को स्वीकार कर लिया, केवल जो पके हुए पीलू के फल थे वो उन्होंने भक्तों को बांटने के लिए दे दिए, कहे कि सारे भक्तों में बांट दो, वृंदावन के पीलू फल है, सब खाएंगे, वृंदावन का स्मरण करेंगे। तो उसमें से जो भक्त वहां पर थे जो जानते थे कि ये पीलू के फल कैसे खाने चाहिए वो सब चूस चूस कर खा रहे थे, और जो उड़िया भक्त जिन्हें पता नहीं था ये फल कैसे खाने हैं वो उन्हें चबा कर खा रहे थे। तो जो चबाए तो उनकी हालत क्या हो गई, मुखे तार झलगेला जिव्वा करे ज्वाला वृंदावनेर पीलू खाई थे यही एक लीला। जो भक्त जो नहीं जानते थे उसे कैसे खाना है वो चबा रहे थे और चबा चबाते उन्हें बहुत तीखा लग गया, क्योंकि उसके अंदर बी होती है, चूस के खाना होता है और बीज फेंक देना होता है। तो जिन्होंने चबा के खाया वो जो बीज इतना तीखा लगा उनको, तो माने जीवाए ज्वाला, जीवा जलने लगी जलने लगी। और इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पीलू के पल खाना उन भक्तों में एक लीला बन गई। महाप्रभु कहते हैं आपको इतना भी नहीं पता वृंदावन के फल कैसे खाते, आप क्या वृंदावन समझ गएंगे। तो इस प्रकार से जो वो लीला चलती रही। जगदानंदर आगमने सवार उल्लास, यही मते लीला चले प्रभु रविलास। जगदानंद पंडित वापस आ गए और सारे भक्तों में उल्लास फैल गया। इस प्रकार से महाप्रभु अनंत लीलाएं वहां पर जो है वो किया करते थे। दूसरी लीला अभी कविराज गोस्वामी सुनाने जा रहे हैं। एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु यमेश्वर टोटा जा रहे थे। यमेश्वर टोटा ये मतलब यमेश्वर उद्यान, यहां पर कौन रहते थे? गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित से मिलने शायद जा रहे होंगे, यमेश्वर टोटा जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में वो एक मधुर ध्वनि सुनते हैं और पाते हैं कि एक एक महिला, एक्चुअली उसे कहते हैं देवदासी, वो देवदासी बहुत मधुर स्वर में कुछ गा रही थी। क्या गा रही थी? वो गीत गोविंद का एक पद गा रही थी। और जैसे ही महाप्रभु सुनते हैं वो भावावेश में आके उस दिशा में दौड़ने लगते हैं। स्त्री गा रहा है या पुरुष गा रहा है, कौन गा रहा है इसकी चिंता नहीं, और भागते जा रहे, भागते 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 जा रहे हैं। और रास्ते में कुछ काटेरी जो है वो पेड़ थे, तो उनके बीच में से भाग रहे, उनके शरीर को काटे लग रहे, उसका भी उन्हें जो है वो भान नहीं था। अंगे काटा लागीला किचुना जानीला, आस्ते व्यस्ते गोविंद तार पाछीते धाइला। भाग रहे काटे लग रहे, उसका भी उन्हें अवसान नहीं है, ध्यान नहीं है। और गोविंद पीछे 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 भाग रहा है, गोविंद पीछे 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 भाग रहा है। और वो स्त्री और महाप्रभु उनके बीच में थोड़ी दूरी रही थी, गोविंद जाके महाप्रभु को पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं एक स्त्री गा रही है। और जैसे स्त्री नाम सुनते महाप्रभु अपने बाह्य चेतना में आ जाते हैं और जो है वो वहीं से वापस लौटते हैं। प्रभु कहे गोविंद आजी राखीला जीवन, स्त्री परश हैले अमार हैत मरण। आज मेरे जीवन की रक्षा की है गोविंद तूने, यदि स्त्री का मुझे गलती से भी स्पर्श हो जाता तो मेरा मरण हो जाता था। इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो कठोरता से अपने संन्यास व्रत का पालन करते थे। स्त्री शब्द ये नाम भी नहीं लेते थे, वो केवल प्रकृति कहा करते थे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि उनका यदि स्पर्श हो जाता तो मेरा मरण हो जाता था। और इस प्रकार से गोविंद को महाप्रभु कहते हैं कि आपने मेरी रक्षा की है, मेरा जीवन बचाया है। गोविंद कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ही आपका जो है वो जीवन रक्षा किया हुआ है। महाप्रभु कहते हैं गोविंद से आज के बाद आप हमेशा मेरे साथ रहना और मेरी ऐसे विपद परिस्थितियों में केवल जो है वो आप रक्षा करना। तो देखिए गोविंद का सौभाग्य, हर समय इसके बाद गोविंद महाप्रभु के साथ रहने लगे। और स्वरूप दामोदर आदि बाकी सब भक्तों को जब गोविंद ने सुनाया कि इस प्रकार से लीला हुई तो सारे भक्त भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हो जाते हैं? क्योंकि एक स्त्री से स्पर्श से महाप्रभु बचे थे, यदि गलती से भी स्पर्श हो जाता तो क्या हो जाता, महाप्रभु क्या प्रायश्चित लेते अपने आप को, उसके बारे में तो बोल ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये दूसरी लीला, स्त्री का गान और महाप्रभु का अपने आप को संभालना, ये वृत्तांत सुनाते हैं। और अभी दूसरा एक और वृत्तांत सुनाना प्रारंभ करते कविराज गोस्वामी, जो वाराणसी से संबंध है। तो अभी हमारा कैमरा जा रहा है वाराणसी में, क्या चल रहा है वाराणसी में? तपन मिश्रा, हमें पता है तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य, ये दो प्रमुख महाप्रभु के भक्त है। तपन मिश्रा के और एक लड़के थे जिनका नाम था रघुनाथ भट्ट। तो कई भक्तों को सवाल आता है कि ऐसे ऐसे सरनेम क्यों अलग अलग लगते हैं? तपन मिश्रा के लड़के हैं तो इनका नाम भी कुछ सरनेम मिश्र चाहिए था, तो ये सरनेम ज्यादा करके इस प्रकार से नहीं लगाए जाते। कभी ब्राह्मण है तो उन्हें भट्ट या भट्टाचार्य ऐसी पदवी ऐसा पुकारा जाता है, तो इसलिए रघुनाथ भट्ट। महाप्रभु की लीला में तीन रघुनाथ है, हमने देखा था जब रघुनाथ दास गोस्वामी की लीला अंत्य लीला के छठे अध्याय में चर्चा की थी। तो एक थे स्वरूपेरे रघु, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी, दूसरे थे रघुनाथ वैद्य जो दवाई बनाया करते थे, दिया करते थे, और तीसरे थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये तपन मिश्रा के लड़के थे। तो महाप्रभु जब भी जाया करते थे वृंदावन, जाते समय वृंदावन से आते समय जब वाराणसी में जाया करते थे, वाराणसी में कितने समय तक महाप्रभु रुके थे? सनातन गोस्वामी को 2 महीना शिक्षाएं दी थी उन्होंने वहां पर, अंत्य लीला के अध्याय 20 में हमने उसे सुना है। तो जब वाराणसी में रुके थे तब रघुनाथ भट्ट जो बालक थे उन्हें मिला करते थे, उन्हें कृपा दी थी, और काफी समय से इनके मन में चल रहा था कि मैं महाप्रभु को मिलने के लिए जाऊं। और अभी जो है वो तपन मिश्रा के लड़का रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अभी महाप्रभु को मिलने के लिए उत्कंठा उनकी बढ़ गई है। इथा तपन मिश्र पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य, प्रभुरे देखिते चलीला छाड़ी सर्व कार्य। अपना सब कुछ कारोबार छोड़ के वो अभी महाप्रभु को मिलने के लिए निकले हैं। वाराणसी से निकले हैं और अभी वो जा रहे हैं बंगाल से होकर वो पुरी की तरफ निकले हैं। बंगाल में उन्हें और एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था रामदास विश्वास। ये रामदास विश्वास प्रभु रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत विद्वान पंडित भी थे और एक ग्रंथ था काव्य प्रकाश। शास्त्रों में तो बहुत प्रवीण ही थे, ये जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है इसके वो अध्यापक थे। 2400 घंटे राम नाम का वो जप किया करते थे। तो दोनों मिल जाते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रामदास विश्वास। तो रामदास विश्वास काफी सारी सेवा करते हैं रघुनाथ भट्ट के, उनका बोझा उठा के अपने सर पे वो रख लेते हैं। रघुनाथ भट्ट कहते ऐसा मत करो, मेरी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सुख पूर्वक मेरे साथ चलो। तो रामदास विश्वास कहते हैं कि मैं एक कायस्थ, मैं एक शूद्र परिवार से हूं, ब्राह्मण की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए आप मुझे सेवा करने दीजिए। तो इस प्रकार से वो सेवा ली उन्होंने, सेवा उन्होंने जो है वो स्वीकार कर ली। इस प्रकार से वो सेवा करते हुए, राम नाम का जप करते हुए जो है वो आ जाते हैं और जगन्नाथपुरी में पहुंच जाते हैं। तो रघुनाथ भट्ट जो है महाप्रभु से मिलते हैं। महाप्रभु तो पहले से ही जानते हैं उन्हें, महाप्रभु दृढ़ता से आलिंगन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आप अभी आए हो, बहुत अच्छा हो गया, आप यहीं पर रहिए मेरे साथ। उन्हें गोविंद को बोल के एक कमरे की व्यवस्था करते हैं और आए हो तो आप जगन्नाथ जी का दर्शन भी अच्छे से लीजिए और मेरे साथ ही रहकर जो है वो प्रसाद पाइए। तो इस प्रकार से रघुनाथ भट्ट जो है वो वहीं पर रहे। और बताते कविराज गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट 8 महीने तक जो है महाप्रभु के साथ ही रहे, महाप्रभु का संग मिला, दर्शन लिया करते थे। स्वरूप दामोदर आदि भक्तों के साथ महाप्रभु ने उनकी पहचान करा दी थी। तो इस प्रकार से जो वो 8 महीने तक रहते हैं। और कभी कभी जब वो 8 महीने रहे उसके बीच में वो महाप्रभु को न्योता भी देते थे प्रसाद के लिए जहां पर उनका निवास था। कविराज गोस्वामी कहते थे कि वो बहुत ही निपुण रसोइया थे, बहुत सुंदर पाक कला जानते थे और इतनी सुंदरता, इतनी मधुरता उनके पाक कार्य में थी कि मानो अमृत बनाते थे वो। और महाप्रभु भी बहुत अच्छे से जो है उसका आस्वादन किया करते थे। तो इस प्रकार से रघुनाथ भट्ट को महाप्रभु ने बहुत अपने अच्छे से कृपा प्रदान की। और जो दूसरा व्यक्ति आया था रामदास विश्वास, उसका क्या हुआ? रामदास यदि प्रथम प्रभु रे मिलीला, महाप्रभु अधिक तारे कृपाना करीला। जब पहली बार महाप्रभु रामदास विश्वास से मिले तो उन्होंने अपनी कृपा रामदास को नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्या कारण था? अंतरे मुमुक्षुते हो विद्या गर्ववान, सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान। महाप्रभु तो सर्वज्ञ है, सबके हृदय में क्या चल रहा है सब कुछ जानते हैं, परखते हैं। अंतरे मुमुक्षुते हो, वो जो रामदास विश्वास था भले ही राम नाम का जप किया करता था लेकिन अंतरंग में वो निर्विशेषवादी था, भगवान का कोई रूप होता है इसे वो मानता नहीं था और केवल मोक्ष की अभिलाषा रखता था। तो नाम तो रटता था राम का लेकिन मोक्ष की अभिलाषा रखता था, मुक्ति की अभिलाषा रखता था और निर्विशेषवादी था, भगवान के रूप में उसका विश्वास नहीं था। और विद्या गर्ववान, वो विद्या में बहुत गर्वित था, ज्यादा गर्व था उसे अपने पांडित्य का। और ये जो है जो भवानंद राय उनका परिवार वहां पर था, उनके वंशजों को ये काव्य प्रकाश जो ग्रंथ के अध्यापक थे वहां पर जाके उन्हें सिखाया करता था, इसलिए महाप्रभु ने ज्यादा कृपा नहीं की और बाद में वो निकल भी गए होंगे वहां से। तो इस प्रकार से जब 8 महीने रघुनाथ भट्ट वहां पर रुके, अभी उनका जाने का समय आया, महाप्रभु कुछ उपदेश देते हैं उन्हें विशेष। अष्टमास रही प्रभु भट्टे विदाय दिला, विवाह ना करी बलि निषेध करीला। 8 मास रहने के पश्चात विदा देते समय महाप्रभु ने उन्हें कहा विवाह ना करी हो, विवाह मत करो, अभी तो निर्विवाहित ही थे। तो महाप्रभु ने कहा कि विवाह मत करो, ऐसा उन्होंने जो है वो आदेश दिया। और क्या आदेश दिया? वृद्ध माता पिता रियाई करह सेवन, वैष्णव पाश भागवत कर अध्ययन। आप जो है अपने वृद्ध माता पिता है, उनके माता पिता काफी वृद्ध थे, अपने वृद्ध माता पिता और वो भी वैष्णव थे तपन मिश्रा और वो, आप उनकी सेवा करो और महान भागवत को ढूंढो, वाराणसी में कोई होगा उनसे जाके श्रीमद भागवत उसका अध्ययन करो। और पुनरपि एक बार आसीहनीला चले एत बलि कंठमाला दिला तारो गले, और एक बार मुझे नीलाचल में मिलने के लिए यहाँ पर आ जाओ, ऐसा बोल के महाप्रभु ने एक उनके पास कोई कंठीमाला थी, वो कंठीमाला उन्होंने रघुनाथ भट्ट को जो है वो भेंट के रूप में अर्पण कर दी। आलिंगन देते महाप्रभु ने और रोते रोते रघुनाथ भट्ट वहाँ से विलाप करते हुए निकलते हैं और वाराणसी पहुँच जाते हैं और उनके माता पिता की सेवा करने लगते हैं और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने लगते हैं जो महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी। तो इस प्रकार से 4 साल तक उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की। जब उन्हें काशीवास हो गया, मतलब जब उन्हें उन्होंने देहत्याग कर दिया, उसके पश्चात रघुनाथ भट्ट पुनः सब कुछ छोड़ के महाप्रभु के चरणों में जगन्नाथपुरी में आ जाते हैं। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पुनः एक बार वो 8 महीने तक महाप्रभु के संग में रहते हैं। फिर महाप्रभु उन्हें आज्ञा देते हैं कि आप अभी वृंदावन चले जाइए और रूप और सनातन इनके साथ आप रहिए। और क्या करना है? भगवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम अचिरे करे बेन कृपा कृष्ण भगवान। रूप और सनातन के साथ रहो और सदैव श्रीमद् भागवत का पाठ करना, अध्ययन करना और कृष्ण नाम हमेशा लेते रहना। इस प्रकार से महाप्रभु पुनः एक बार आलिंगन करते हैं और इस बार आलिंगन करके वो कृष्ण प्रेम संचारित करते हैं उनके हृदय के अंदर और कृष्ण प्रेम में भावावेश हो जाते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और पूर्ववत महाप्रभु को कुछ एक बहुत लंबी 14 हाथ लंबी तुलसी की माला भेंट में मिली थी, वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद के रूप में वो रघुनाथ भट्ट को दे देते हैं और रघुनाथ भट्ट भी वो माला को इस प्रकार से संभालते हैं मानो इष्ट देव उन्हें मिले हो। और वहां से वो विदा लेके जाते हैं और वृंदावन में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनके साथ रहने लगते हैं और जो महाप्रभु ने आज्ञा दी थी उसका यथा रूप पालन करते हैं। श्रीमद् भागवत सुनते थे और पढ़ते थे, इस प्रकार से भागवत का अध्ययन उनका था। जब वो भागवत पढ़ते थे तो उनका शरीर रोमांचित हो उठता था और आंखों से अश्रु बहा करते थे। बताते हैं उनका कोकिला जैसा मधुर आवाज था और 3 से 4 अलग अलग रागों में श्रीमद् भागवत को वो सुनाया करते थे और सारे गोस्वामी आके उनको सुना करते थे। और इस प्रकार से जो वो गोविंद के चरणों में उन्होंने अपने आप को अर्पण कर दिया था। गोविंद चरणे कैला आत्मसमर्पण गोविंद चरण अरविंद यार प्राण धन। गोविंद के चरणों में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था और गोविंद के चरण केवल अभी उनके प्राणधन हुए थे। अपने शिष्यों को उन्होंने मदद के लिए लिया और गोविंद जी के लिए बहुत सुंदर मंदिर उन्होंने बनवाया था। भगवान गोविंद के लिए एक सुंदर वंशी और मकर कुंडल जो है वो उन्होंने बनवाए थे और कुछ नियमों का वो पालन किया करते थे। सारे गोस्वामी ने अपने अपने एक एक नियम लगा लिए थे। उस प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इनके नियम सारे भक्तों को सुनने के लिए बहुत आवश्यक है और पालन करना अतीव आवश्यक है। कैसे वो किया करते थे? ग्राम्य वार्ता ना सुने ना कहे जीवाय कृष्ण कथा पूजा दीते अष्ट प्रहर याय। ग्राम्य वार्ता बिल्कुल सांसारिक वार्ता, इसने क्या किया कौन क्या कर रहा है बिल्कुल न सुनते थे न जीवा से बोलते थे। और 8 प्रहर, 1 प्रहर होता है 3 घंटे का, 8 प्रहर मतलब पूरे 24 घंटा क्या किया करते थे? कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा, कृष्ण संकीर्तन, यही उनका जो है वो कार्य था। वैष्णवेर निंदाय कर्म नहीं पड़े काने सबे कृष्ण भजन करे यही मात्र जाने। दूसरा कोई आता था और कहता था पता है आपको उस वैष्णव ने क्या किया, उसे बिल्कुल नहीं सुनते थे वो। अपने ऐसा बताया जाता है कि अपने कानों में उन्होंने कभी भी वैष्णव निंदा पढ़ने नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो केवल एक ही चीज को जानते थे, ये व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है यही मैं जानता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बाकी मुझे कुछ बताओ मत। ये व्यक्ति सबे कृष्ण भजन करे यही मात्र जाने, मैं केवल एक चीज जानता हूँ कि सारे लोग कृष्ण का भजन कर रहे हैं बाकी कुछ नहीं। यदि हम भी इस नियम को अपनाए तो सारी वैष्णव निंदा से जो हम लोग हमेशा दूर रह सकते थे। जब भी उन्हें महाप्रभु की याद होती तब आ जाती थी, तभी वो जो माला दी थी महाप्रभु ने तुलसी की बड़ी माला वो अपने हृदय को लगा लेते थे और रोने लगते थे। तो इस प्रकार से जो है वो उनका जीवन निरंतर कृष्ण प्रेम में विवल होते होते जो है वो वहीं पर वृंदावन में बीता। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने 3 लीलाएं यहाँ पर बताई है। जगदानंदेर कहिलु वृंदावन गमन, तार मध्य देवदासीर गान श्रवण, जगदानंद की वृंदावन गमन लीला, सनातन गोस्वामी से मिलने की लीला, और जो देवदासी का गाना उन्होंने सुना और गोविंद ने उनकी रक्षा की वो एक लीला। महाप्रभु रघुनाथे कृपा प्रेम फल, महाप्रभु ने जो प्रेम अपना प्रदान किया रघुनाथ भट्ट को वो एक लीला। एक परिच्छदे तीन कथा कहिलु सकल, तीन कथाएं मैंने एक ही अध्याय में बता दी है। ये यही सकल कथा सुने श्रद्धा कोरी, तारे कृष्ण प्रेम धन देन गौर हरी। जो श्रद्धा पूर्वक इन कथाओं को सुनता है चैतन्य महाप्रभु जो है वो उन्हें कृष्ण प्रेम बहुत ही जल्दी प्रदान करेंगे। इस प्रकार से अध्याय 13 को लेके हमारे एक सेक्शन अंत्य लीला का पूरा होता है। जैसा मैंने कहा था अंत्य लीला दो विभागों में विभाजित है। पहला विभाग है अन्य भक्तों के साथ महाप्रभु का आदान प्रदान, जो बाहर से आए थे वो रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जगदानंद पंडित, प्रद्युम्न मिश्र, इन सब के साथ जो है उनका व्यवहार। और इसके बाद वाले 14 से लेकर 20 तक जो अध्याय है वो महाप्रभु का पूर्ण विरह गान, और 14वां अध्याय का शीर्षक भी यही रहेगा महाप्रभु का विरह। तो सबसे पहले ये जो महाप्रभु की लीलाएं हैं जो गंभीरा में महाप्रभु ने की, गंभीरा काशी मिश्र का घर का जो एक हिस्सा था इसे गंभीरा कहा जाता था। जो अंतिम 18 साल और उसमें भी अंतिम जो 12 साल है वो महाप्रभु के वहां पर जो है वो बहुत ही गंभीर लीलाएं उन्होंने की, हमारी समझ से वो परे है और इन्हें समझना भी मुश्किल है, कहना और समझाना और भी मुश्किल है। इसलिए मैं सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वंदन करूंगा और उनका स्मरण करते हुए आगे कुछ बोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल अधिकार नहीं है इन लीलाओं को कुछ कहने के बारे में। कथंचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामितम। चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करेंगे तो कठिन से कठिन कार्य भी जो है वो आसान हो जाता है, और ये सबसे कठिन कार्य है महाप्रभु के 14 से लेके 20 तक अध्यायों का जो है वो वर्णन कराना और समझाना। और हम तो प्रारंभ तो कर रहे हैं, जो कविराज गोस्वामी ने बोला है उसको एक तोते के भांति मैं केवल दोहराऊंगा। पहले श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण विच्छेद जातार्त्या क्षीणे चापी मनस, नहीं ये तो 13वें श्लोक का हो गया, 14वें श्लोक का पहला श्लोक वही है। कृष्ण विच्छेद विभ्रांत्या मनसा वपुषाधिया यत् यत् व्यदत्त गौरांग तत्तत् लेशः कथत्ते अधुना। चैतन्य महाप्रभु ने अपने मन बुद्धि तथा शरीर से संपन्न जो अलग अलग कार्यकलाप प्रस्तुत किए उनका मैं केवल अंश मात्र ही वर्णन करने वाला हूं, जो कृष्ण के तीव्र विरह में जब वो मोहग्रस्त हो जाते थे उस समय के उनके कार्यकलाप जो है वो मैं केवल अंश मात्र वर्णन करने वाला हूं, ऐसा कविराज गोस्वामी कहते हैं। और कविराज गोस्वामी आगे और कहते हैं, प्रभुर विरहोन्माद भाव गंभीर भुजी तेना पारे के यद्यपि होय धीर। प्रभुर विरह उन्माद भाव गंभीर, अत्यंत गंभीर भाव से युक्त है महाप्रभु का विरह का उन्माद। भुजी तेना पारे के आसीब होय धीर, कितना भी विद्वान और धीर व्यक्ति क्यों ना हो वो भी समझ नहीं सकता इसे। भुजी तेना पारी वर्णिते के पारे, जब समझ पाना ही कठिन है तो वर्णन कर पाना उसके बारे में क्या कहा जाए। सही भुजे वर्णे चैतन्य शक्ति देने यारे, चैतन्य महाप्रभु यदि शक्ति प्रदान करेंगे तो ही कोई व्यक्ति जो है इसे समझ सकता है या बता सकता है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि स्वरूप दामोदर और रघुनाथ दास गोस्वामी ये महाप्रभु के पार्षद दोनों सदैव जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ रहा करते थे। ऐसे कई सारे महाप्रभु के पार्षद है जिन्होंने टिप्पणियां लिखी है और महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन किया है, जैसे मुरारी गुप्त है, अन्य कई सारे हैं, वृंदन दास ठाकुर है, कई सारे पार्षद जिन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन ये दो पार्षद है जो खास करके महाप्रभु के साथ रहे उन 12 सालों में, इसलिए वो निकटवर्ती है, इसलिए उनके नोट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूं, मैं बाकी और कुछ नहीं आपको जो है वो बता रहा हूं। उसमें भी जो स्वरूप दामोदर है उन्होंने केवल सूत्र रूप में संक्षेप में लिखा है, लेकिन जो रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने इनका विस्तार से वर्णन किया हुआ है, तो उनके उनको लेके मैं वर्णन कर रहा हूं। इसलिए इन लीलाओं को सुनने के पहले आप सबको सबसे पहले क्या चाहिए, एक तो भूरी भूरी श्रद्धा और विश्वास और आदि लीला का स्मरण, आदि लीला में चैतन्य तत्व क्या है उसे समझ लिया है, तो इसलिए वो फाउंडेशन है और अभी जो है वो उसका मुकुट मणि जो है वो उस लीला की चल रही है। ताते विश्वास करी शुन भावेर वर्णन हईबे भावेर ज्ञान पाईबा प्रेम धन। यदि विश्वास पूर्वक इन्हें सुनेंगे तो क्या होगा, भावेर ज्ञान भाव जितने महाप्रभु जो भाव है उसका ज्ञान हो जाएगा और पाईबा प्रेम धन भगवत प्रेम जो है वो प्राप्त हो सकता है यदि विश्वास पूर्वक हम इन लीलाओं को सुने। कृष्ण जब मथुरा भगवान कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के मथुरा और उसके आगे फिर द्वारका चले जाते हैं तो गोपियों को जो विरह महसूस हो रहा था भगवान कृष्ण को लेके, उसी प्रकार से विरह में चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहा करते थे। और जब उद्धव संदेश देने के लिए आए थे वृंदावन में तो राधा रानी ने जो विलाप किया था जो भ्रमर गीत आदि भागवत में वर्णन आता है, तो उस प्रकार का उन्माद महाप्रभु जो है वो सदैव प्रकट किया करते थे। तो एक बार की बात सुनाते हैं कविराज गोस्वामी। एक दिन महाप्रभु करिया छेन शयन कृष्ण रासलीला करे देखिला स्वपन। महाप्रभु लेट रहे थे और स्वप्न में वो रासलीला देखते हैं और जो रासलीला में भगवान कृष्ण का जो सुंदर स्वरूप है वो उन्हें दिखता है, उसका वर्णन करते हैं। त्रिभंग सुंदर देह मुरली वदन पीतांबर वनमाला मदन मोहन। त्रिभंग सुंदर शरीर है उनका, मुरली बजा रहे हैं, पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं और वनमाला पहने हुए हैं, इस प्रकार से मदन को भी मोहित करने वाले ये मदन मोहन। और गोपियां भी थी उनके साथ, श्रीमती राधारानी का भी दर्शन होता है और रासलीला चल रही है और वृंदावन में मुझे अभी कृष्ण मिल गए हैं, ऐसे भाव में महाप्रभु सपने में ही रत है। गोविंद जब देखता है महाप्रभु अभी तक लेटे हुए क्यों नहीं उठ रहे, कितना 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 कितने लेट तक सो रहे हैं महाप्रभु, तो गोविंद महाप्रभु को उठाते हैं और जब जैसे ही गोविंद ने जगाया महाप्रभु जगते हैं और देखते हैं अरे ये तो सपना था, तो और बहुत विवल और दुखी हो जाते हैं कि ये केवल तो सपना था, मुझे लगा कि मैं कृष्ण को पा लिया हूं। और फिर वो नित्य कर्म कर लेते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन महाप्रभु गरुड़ स्तंभ से ही किया करते थे। आप यदि जगन्नाथपुरी गए होंगे तो आप देख सकते हैं कि गरुड़ स्तंभ काफी पीछे है और उसके आगे फिर सभा मंडप भोग मंडप ये सब मंडप आते हैं, तो गरुड़ स्तंभ से महाप्रभु दर्शन किया करते थे और उनके आगे लाखों लोग हुआ करते थे जगन्नाथ जी का दर्शन लेते हुए। तो एक बार की बात है जैसे वो दर्शन ले रहे थे वहां पर एक महिला उड़िया महिला वहां पर आ जाती है। उड़िया एक स्त्री भिड़े दर्शन न पैया गरुड़े चढ़ी देखे प्रभु कंधे पद दिया। उसे उत्साह था जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए और इतनी भीड़ थी शायद उसकी ऊंचाई कम होगी तो देख नहीं पा रही थी जगन्नाथ जी को, इसलिए उसने क्या किया वो गरुड़ स्तंभों को पकड़ के महाप्रभु के कंधे पर चढ़ गई और चढ़ के अभी जगन्नाथ जी का दर्शन ले रहे थे। अभी गोविंद जी वहां पर खड़े है, महाप्रभु को स्त्री मतलब पहले ही परेशानी, तो गोविंद उस स्त्री को डांटता है ए उतर उतर क्या कर रही है तू, सन्यासी के ऊपर चढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा। गोविंद डांट रहा है। महाप्रभु तो प्रेमवश जगन्नाथ जी का दर्शन ले रहे थे, वो डांट फटकार सुन के गोविंद का सुन के थोड़े महाप्रभु बाह्य चेतना में आ जाते हैं और देखते क्या हो रहा है और महाप्रभु को देखते कि एक स्त्री मेरे कंधे पे ऊपर जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए खड़ी है, तो महाप्रभु गोविंद को डांट रहे हैं। अभी वो स्त्री को नहीं डांटते, महाप्रभु गोविंद को डांटते हैं। गोविंद को क्या कहते वो, तारा आरती देखी प्रभु कही ते लागिला एता आरती जगन्नाथ मोरे नहीं दिला। गोविंद को देख, गोविंद तू आदिवासी ऐसा असभ्य व्यक्ति ऐसा वर्तन मत कर, उसे उसे जगन्नाथ का दर्शन करने दे। क्यों करने दे, क्या तारा आरती देखी प्रभु कही ते, उसका उत्साह उसकी उत्कंठा देखो कितना है जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। एता आरती जगन्नाथ मोरे नहीं दिला, जगन्नाथ जी ने ऐसी उत्कंठा ऐसा लौल्य दर्शन करने के लिए मुझे भी नहीं दिया हुआ है। जगन्नाथे अविष्ट इहार तनु मन प्राणे मोरस कंधे पद दिया छे तहा नहीं जाने। जगन्नाथ जी को दर्शन करने में उतनी तल्लीन है वो कि अपने शरीर मन तन धन सब कुछ उसने लगा दिया है और ये समझ भी नहीं पाई कि वो किसी सन्यासी के कंधे के ऊपर चढ़ गई है। वो जानबूझकर नहीं चढ़ी थी, वो वास्तव में तल्लीन थी, वो एब्जॉर्प्शन था उसका जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। तो महाप्रभु कहते हैं, अहो भाग्यवती एई वंदी इहार पाय, इहार प्रसादे ऐछे आरती अमारा वा हाय, कि कितनी भाग्यवान है। और महाप्रभु कहते हैं, इसके चरणों का वंदन मैं करता हूं और इसकी चरण धूल मेरे सर पर लेता हूं, ऐसी जगन्नाथ जी के प्रति उत्कंठा और लवल्य इसे प्राप्त हो गया है। जगन्नाथ जी यदि कृपा करे तो मुझे भी जो है वो लवल्य चाहिए। तो ऐसा महाप्रभु ये लीला से हमें सिखा रहे कि हमें भी भगवान का दर्शन लेते समय जो है किस प्रकार से उत्कंठा से भाववश जो है वो दर्शन लेना चाहिए। तो इसके पूर्व वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जो है वो जगन्नाथ जी का वही उन्हें जो सपने में रूप आया था मुरली वदन वाला, जगन्नाथ जी को उसी भाव में वो दर्शन कर रहे थे वास्तव में, और जगन्नाथ जी का वैसे ही दर्शन कर रहे थे। अभी क्योंकि ये वृत्तांत हो गया तो उनकी बाह्य चेतना वहां पर प्रकट हो जाती है और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को अभी वो जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में देखते हैं और वो मुरली वदन वाला रूप वहां से चला जाता है। तो महाप्रभु सोचते हैं कि मैंने कौन सा रत्न दिव्य रत्न पाया था, वृंदावन के कृष्ण मुझे प्राप्त हो गए थे, अभी मैं कहां कुरुक्षेत्र में आ गया हूं। और महाप्रभु बाह्य चेतना में आ जाते हैं और जो महिला वहीं पर चरणों में गिर पड़ती है महाप्रभु के, उसे उसे वो से समझ में आता है कि अभी क्या चल रहा है। तो महाप्रभु कहते हैं कि उसकी चरण धूलि मुझे चाहिए और वो महिला महाप्रभु के चरणों में झुक जाती है और प्रणाम करती है और क्षमा याचना करने लगती है। और महाप्रभु कहते हैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी उत्कंठा मुझे भी दो, और वहां से जो है वो निकल पड़ते हैं। और वहां से निकल कर जो है वो महाप्रभु व्याकुल व्याकुल होते ही जा रहे कि वो मैं कृष्ण को प्राप्त कर लिया था वृंदावन वाले कृष्ण को, लेकिन अभी मैं जो है वो मानो एक किसी व्यक्ति को दिव्य रत्न प्राप्त हो गया है और वो रत्न उसके उसे छीना जाता है। तो ऐसा दिव्य दर्शन हुआ था प्राप्त और वो अभी छीन गया है, इस प्रकार से जो महाप्रभु का वर्तन होता था। पहलू वृंदावन नाथ पुनः हराइलो के मोरे नीलेख कृष्ण कहां मुई आईनू, ये उनका भाव था कि मुझे वृंदावन नाथ कृष्ण प्राप्त हो गए थे, अभी के मोरे नीले कृष्ण, कौन लेके गया मेरे कृष्ण और मैं कहां आ गया हूं, इस प्रकार से उनका भाव था। उन्मत तेर प्राय प्रभु करे न गान नृत्य, देह स्वभाव करे न स्नान भोजन कृत्य। महाप्रभु जो इस प्रकार से हमेशा इसी प्रेमोन्माद में उनका गान और नृत्य चला करता था और स्वभाव देह मात्र, केवल जो है वो शारीरिक स्वभाव से उनका जो भोजन स्नान ये सब क्रियाएं होती थी एक स्वाभाविक नित्य कर्म के हिसाब से। वो सचेत भी नहीं रहा करते थे कि मैं कुछ खा रहा हूं या मैं नहा रहा हूं, वे केवल बाह्य रूप से केवल हो रहे थे, अंतरंग में हमेशा उसी उन्माद में उनके जो है वो सारे कार्य होते थे। रात्रि के समय उन्हें नींद भी नहीं लगती थी उस विरह के कारण, कृष्ण का विरह वो महसूस किया करते थे। और महाप्रभु अपना मन का भाव स्वरूप दामोदर और राय रामानंद इन्हें सुनाते थे और स्वरूप दामोदर से वो कहा करते थे, मेरा मन एक भिक्षुक है, उस शरीर को छोड़ के अभी वृंदावन गया है और एक योगी की भांति वहां पर वो बैठा हुआ है और वहां पर जो है वो वृंदावन का आस्वादन कर रहा है, और कई सारे श्लोक वो सुनाते हैं। और स्वरूप दामोदर राय रामानंद और फिर गोपियों के भ्रमर गीत आदि गीत सुना के उन्हें सांत्वना करते हैं और जो है वो उन्हें सुलाने का प्रयास करते हैं। जब आधी रात हो जाती है तब महाप्रभु सोते हैं और फिर राय रामानंद अपने घर चले जाते हैं, स्वरूप दामोदर और गोविंद घर के बाहर वहीं पे सोए हुए हैं और महाप्रभु अंदर ही अंदर जोर से कृष्ण कीर्तन उनका चालू है। सब रात्रि महाप्रभु करे जागरण, उच्च करी कहे कृष्ण नाम संकीर्तन। सारी रात महाप्रभु जगे रहा करते थे और उच्च स्वर में कृष्ण का कीर्तन किया करते थे। अचानक स्वरूप दामोदर जो बाहर ही सोए हुए हैं वो पाते हैं कि कृष्ण का कीर्तन का आवाज नहीं आ रहा है। दरवाजा खोल के देखते हैं, महाप्रभु सारे दरवाजे बंद है लेकिन महाप्रभु गायब, कहां चले गए। सब जगह वहां पर जो है गोविंद सोया, सबको उठाया जाता है, महाप्रभु नहीं है। सारे भक्त दीपक लेके जला के यहां ढूंढ रहे, महाप्रभु कहां गए। जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच जाते हैं, फिर वहां पर जो है वो सिंह द्वार के बाहर उत्तर दिशा में एक ही कोने में महाप्रभु जो है पड़े होते हैं। स्वरूप दामोदर उनको आनंद हो जाता है कि अरे चलो महाप्रभु मिल जाते हैं, लेकिन सारे भक्त दुखी हो जाते हैं उनकी दशा को देख के। क्या थी उनकी दशा? प्रभु पड़ी आछेन दीर्घ हाथ पांच छय, अचेतन देह नासाय श्वास नहीं वय। एक हाथ ऐसा है ना, एक हाथ की लंबाई, ऐसे महाप्रभु की लंबाई बढ़ गई है, पांच छह हाथ की महाप्रभु के शरीर का लंबाई बढ़ गई है और सारे जो उनके अवयव है मतलब हाथ के ये जॉइंट्स कहते हैं ना, हाथ के जॉइंट्स, पैर के जॉइंट्स, कमर के जॉइंट्स, ये सारे लंबे खींच कर मानो ऐसे छः छः इंच बड़े हो जाते हैं और उनका शरीर दुबला पतला हो गया है, उनके शरीर का तापमान कम हो गया है, नासिका से श्वास नहीं ले रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में महाप्रभु जो है वो पड़े हुए हैं, मानो केवल हड्डी के ऊपर चमड़ी रखी गई हो। सारे भक्त बहुत दुखी हो जाते हैं वहां पर देख के। और स्वरूप दामोदर को उपाय या तो अभी क्या करना चाहिए, स्वरूप दामोदर सारे भक्तों को कहते हैं कि उच्च ध्वनि में कृष्ण कीर्तन प्रारंभ कर दो, और सारे भक्त महाप्रभु के कान में जाके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जोर से जो है वो कीर्तन प्रारंभ करते हैं। और कुछ समय के पश्चात महाप्रभु को जाग महाप्रभु सचेत अवस्था में आ जाते हैं, और सचेत होकर जोर से हरि बोल करके महाप्रभु जो है वो चिल्लाते हैं और गर्जना करके मानो सिंह के भांति खड़े हो जाते हैं, और सारा शरीर उनका जो है वो पूर्ववत स्थूल एक 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 नॉर्मल 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 शरीर के समान उनका शरीर हो जाता है। और जो है वो महाप्रभु चकित होकर पूछते हैं, सिंहद्वार यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे कैसे आया? स्वरूप दामोदर को पूछते यहां पे कैसे आए, और महाप्रभु को स्वरूप दामोदर कहते हैं कि पहले आप घर चलिए, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। और महाप्रभु को घर पे लेके जाते हैं स्वरूप दामोदर, सारा वृत्तांत कहते हैं कि सारी रात भर आप जाग रहे थे, अचानक पता नहीं हमें भी पता नहीं आप कौन से दरवाजे से कहां पर और कब चले गए। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यह वृत्तांत जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी इन्होंने एक किताब लिखी है गौरांग स्तव कल्प वृक्ष, इस किताब से मैंने एक प्रसंग लिया हुआ है, और उसका एक श्लोक भी वो सुनाते हैं। ई लीला महाप्रभु रघुनाथ दास गौरांगस्तव कल्पवृक्षे करिया छेन प्रकाश। गौरांगस्तव कल्पवृक्ष इस किताब में रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसका जो है वो विस्तार से वर्णन किया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही बताया जाता है कि वो कैसे गायब हो गए थे घर से, महाप्रभु कहते मुझे तो कुछ स्मरण नहीं, मुझे तो कुछ स्मरण ही नहीं, मैं तो कृष्ण को पाया था, कृष्ण मेरे सामने प्रकट हो गए थे और बिजली के समान जो है वो अंतर्धान हो गए, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा था। एतक कहिलु प्रभुर अद्भुत विकार यहार श्रवणे लोके लागे चमत्कार। लोग चकित हो जाते हैं ऐसा जब सुनते हैं तो। आपने शास्त्र में भी ऐसा कहीं सुना नहीं होगा, आपने प्रत्यक्ष रूप में किसी लोगों को ऐसे दृश्य प्रकट करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसे अपने किताब में लिख के रखा है, उनसे मैंने सुना हुआ है, वही मैं आपको सुना रहा हूं, आप विश्वास से इसे सुनो। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी विनती करते हैं। और एक दिन की बात बताते हैं। एक दिन महाप्रभु समुद्र याईते चटक पर्वत देखिले न अचंबिते। महाप्रभु जा रहे किस कहां जा रहे हैं, समुद्र स्नान के लिए जब जा रहे होते चटक पर्वत को देखता है। चटक पर्वत मतलब वालू का एकत्रित आके बने हुए एक कुछ टेकड़ी जैसा, उसको देखते महाप्रभु को लगता है गोवर्धन ही है और उसकी तरफ भागते है। गोवर्धन मानते हैं हंताय मद्री रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयस्तयोर यत पानी यसु यवस कंदर कंद मूलय। इस श्लोक का उच्चारण करते 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 महाप्रभु जोर से भाग रहे हैं। यही श्लोक पढ़ी प्रभु चले न वायु वेगे गोविंद धैल पाछे नाही पाय लागे। महाप्रभु भाग रहे, ये श्लोक का उच्चारण करते हुए जोर जोर से भाग रहे महाप्रभु, और पीछे गोविंद भाग रहे लेकिन महाप्रभु पकड़ में नहीं आ रहे। फिर स्वरूप दामोदर भाग रहे, रामाई नंदाई वो भाग रहे, सारे लोग भाग रहे महाप्रभु के बीच। महाप्रभु आगे हाथ ऊपर करके गोवर्धन गोवर्धन करके ऐसा वही श्लोक का उच्चारण करते हुए जा रहे हैं। और महाप्रभु की दशा, महाप्रभु के शरीर के ऊपर जो है वो रोमांच खड़े हुए हैं, मानो कदम्ब का फूल आपने देखा होगा कैसे कैसे उसके उसके शरीर में जैसे उन्होंने कांटे आए हुए रहते हैं ऐसे, तो उसी प्रकार से जो है वो महाप्रभु का दिव्य शरीर वो उस प्रकार से जो कदम्बे के फूल जैसा लगता है। महाप्रभु का गले से अभी आवाज भी नहीं आ रही, केवल घुर घुर गोवर्धन ऐसा वो बोल रहे हैं, लेकिन आवाज भी नहीं आ रही, केवल घुर घुर ऐसी ध्वनि आ रही है। और उनके आंखों से जो है वो निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है। दुई नेत्रे भरे अश्रु वह ये अपार समुद्रे मिलीला ये न गंगा यमुना धार। किस प्रकार से अश्रु बह रहे हैं, केवल गंगा यमुना धार नहीं है, यह समुद्र को मिलने वाली गंगा यमुना धार है। जब गंगा नदी बहती हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ पर देखते हैं, उसका प्रवाह देखा कितना बड़ा होता है, लेकिन वही जब समुद्र तक पहुंचती है तो उसका प्रवाह और दुगुना या तीन गुना बड़ा हो जाता है, क्योंकि कई सारे और उपनदियां आके उन्हें मिलती है। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी नदियां जैसे बह रही है, उस प्रकार से महाप्रभु के आंखों से ऐसी समुद्र में मिलने वाली गंगा और यमुना इनकी धार बह रही है। उनका जो है वो शरीर का रंग मानो शंख जैसा सफेद हो जाता है और भूमि पर महाप्रभु मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। और गोविंद फिर अभी जाके पकड़ लेता है, गोविंद पकड़ लेता है, थोड़े जल उनके मुख के ऊपर छिड़कता है और अपना उत्तरीय वस्त्र लेके उन्हें वो हवा हवा देने का प्रयास करते हैं। स्वरूप दामोदर उनकी उस दशा को देख के रोने लगते हैं, और बाकी सारे भक्त जब अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु के शरीर में प्रकट हुए हैं, सारे भक्त जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इस प्रकार से उन्हें उपाय पता था, जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन वहां पर चलता है, और कुछ समय पश्चात महाप्रभु को सू जाती है और महाप्रभु हरिबोल करके चिल्ला के जो है वो गर्जना करके खड़े हो जाते हैं और जो है वो महाप्रभु वहां पर अर्ध बाह्य चेतना में आते हैं। अर्ध बाह्य चेतना में वो कहते देखते और कहां है गोवर्धन में मैं आया था, ये कहां में आ गया, अभी कहां है वो गोवर्धन में देख रहा था सुंदर कृष्ण मुरली बजा रहे थे। गोवर्धने चढ़ी कृष्ण बजाईला वेणु, गोवर्धने चौधरी के चरे सब धेनु, सही सारे गैया चर रही थी, कृष्ण मुरली बजा रहे थे। वेणु नाद सुनी आईला राधा ठाकुरानी, सब सखी गण संगे करिया साजनी, सारे सखियों के लेके सज ढसकर राधा ठाकुरानी वो भी वहां पर आई थी और राधा रानी और कृष्ण इनका मिलन हो रहा था और एक गोपी ने मुझे कहा जाके वो फूल तोड़ के लाओ और जब मैं फूल वहां से तोड़ने के लिए गया मैं कोलाहल सुना और आंखें खोली तो मैंने आपको देखा। क्या आप लोगों ने मेरा वो रत्न जो मुझे प्राप्त हुआ था आपने भंग डाल दिया, अभी मैं दुखी हो गया हूं, क्या आप इस प्रकार का जो है वो कोलाहल आप मत किया करो। और महाप्रभु दुखी थे, अभी वहां पर दूर से परमानंदपुरी और ब्रह्मानंद भारती आ रहे होते हैं। जब वो दूर से आ रहे थे महाप्रभु अभी पूर्ण बाह्य चेतना में आ जाते हैं, अभी तक अर्ध बाह्य में थे अभी पूर्ण बाह्य में। और क्योंकि परमानंदपुरी और ब्रह्मानंद भारती ये बड़े थे उनसे और गुरु के गुरु भाई इस प्रकार से जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे परमानंदपुरी वो लोग तो उनके प्रति आदर बुद्धि थी तो इसलिए बाह्य चेतना में आ जाती है। और महाप्रभु उनको चरण वंदना करके कहते हैं कि आप इतना दूर कैसे आए, तो परमानंदपुरी कहते हैं कि आपका विलाप और आपका नृत्य देखने के लिए आए हैं। तो महाप्रभु थोड़े लज्जित अवस्था में आ जाते हैं और सारे भक्तों को लेके अभी वो समुद्र स्नान करने के लिए लेके जाते हैं और समुद्र स्नान करके आके वो दोपहर के मध्यान्ह में भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो विलाप हुआ करता था वो बिल्कुल ही विचित्र और अचंबित और आश्चर्यचकित करने वाला महाप्रभु का ये विलाप हुआ करता था। एबे प्रभु यत कैला अलौकिक लीला, ये के वर्णिते पारे से महाप्रभु खेला, इस प्रकार से अलौकिक लीला महाप्रभु किया करते थे और इतनी अलौकिक हुआ करती थी, के वर्णिते पारे, कौन वर्णन कर सकता है महाप्रभु के इतने सारे अनंत लीलाओं का वर्णन। संक्षेपे कहिया करी दिग्दर्शन यहा सुने पाए कृष्ण रा चरण, मैं केवल संक्षेप में एक संकेत मात्र इन लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ, विस्तार से तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, केवल संकेत दे रहा हूँ कि ऐसी ऐसी लीलाएं हुई है और ये केवल सूत्र गणन है, लेकिन जो भी इसे सुनता है यही यहा सुने पाए कृष्ण रा चरण, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति उस व्यक्ति को हो सकती है जो विश्वास से और श्रद्धा पूर्वक इन लीलाओं को सुनता है। तो इस प्रकार से जो है वो कविराज गोस्वामी विराम देते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे आर आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। तो यहाँ पर जो हमारा 13वां और 14वां अध्याय ये समाप्त होता है। अभी समय है हमारा आज का प्रश्न काफी आसान था कि निम्नलिखित में से कौन से भक्ति कुलपर वृक्ष के 9 जड़ों में से एक के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। तो भक्ति कुलपर वृक्ष 9वें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन दिया गया है, हमें पता है कुछ बीज है, कुछ मूल है, कुछ अंकुर, तो इसमें जो है वो 9 प्रमुख शाखाएं दी गई है, जो शाखा नहीं 9 प्रमुख जो है वो जड़ दी गई है वृक्ष की। तो कौन जड़ है इनका वर्णन किया गया है 9वें अध्याय के 13 से लेकर 15वें श्लोक तक। तो कौन जड़ नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो ईश्वरपुरी जड़ नहीं है। तो आपने यदि ठीक से पढ़े होंगे 13-14 श्लोक 12-13-14, तो उसमें ईश्वरपुरी जो है वो अंकुर के रूप में बताए गए है इस पूरे कल्प वृक्ष के, भक्ति कल्प वृक्ष के, तो वो जो है वो जड़ नहीं है। तो इसका सही जवाब आएगा डी, ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी जड़ नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो हमारे आज 1 मई है, तो केवल 2 दिन बचे हुए हैं, शेष दिन 2 दिनों में हम भक्तों से विनती करेंगे कि इस प्रकार से आप चैतन्य चरितामृत का आदि लीला को और अच्छे से पढ़ते रहिए, उसका स्मरण करते रहिए, गायन करते रहिए। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम उदाश्चिंतिताम चिंतिताम भक्तश चैतन्य चरितामृतम। आप आदि लीला को और अच्छे से पढ़ते रहिए और यदि महाप्रभु का जो दिव्य उन्माद और उन्माद भरी ऐसी लीलाएं जो है, यदि आपको उनका पान करना है और कृष्ण के चरण उसकी प्राप्ति करनी है, तो बने रहिए। मिलेंगे हम कल शाम को ठीक 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।